सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियो लोक हितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ
ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ತಿರೇಂಚ್ ಗತಿ ಮೇ ತಿರೇಂಚ್ ಜೀವ್ ಮರಣ ಕೆ ಕಾಲ್ ಮೇ ಕಿಸ್ ಗುಣಸ್ಥಾನ್ ಮೇ ಮರಣ ಕರ್ ಕಿಸ್ ಗತಿ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್ ಯಹ ವಿಷಯ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ क्रमांक नंबर 10 में पेज नंबर 8 पर संगी पंचेंद्री पर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्क तिरेंच जीव अर्थात गर्भज पंचेंद्री और समूर्छन पंचेंद्री जीव यदि यह द्वितीय गुण स्थान में मरण करता है तो नरक गति को क्रॉस लगा दिया गया है। दूसरे गुणस्थान में मरण कर कोई भी जीव नरक नहीं जाता, चाहे वह मनुष्य हो चाहे तिरेंच हो। द्वितीय गुणस्थान में अगर मरण होता है तो वह जीव नरक नहीं जाएगा, यह नियम है, यह सिद्धांत है। फिर कितनी गतियों में जाएगा? द्वितीय गुणस्थान में मरण कर तिरेंच गति में जा सकता है, मनुष्य गति में जा सकता है और देव गति में भी जा सकता है। तिरेंच गति में जाएगा तो क्या बनेगा? एकेंद्री, एकेंद्री पर्याय में जा सकता है, किंतु एकेंद्रियों में सभी पर्यायों में नहीं जा सकता। कुछ पर्यायों में जाता है और कुछ पर्यायों में नहीं जाता, ये उसकी विशेषता है। हाय संगी पंचेंद्री जाने वाला जीव गर्भज है और समूर्छन है, संगी पंचेंद्री जीव है। पर मरण द्वितीय गुणस्थान में हो रहा है, इसलिए वह एकेंद्रियों में पृथ्वी कायिक बन सकता है, जल कायिक बन सकता है, वनस्पति कायिक बन सकता है, किंतु इनमें पर्याप्तक वनस्पतियों में, पर्याप्तक जलकाय में, पर्याप्तक पृथ्वीकाय में ही जन्म लेगा और सूक्ष्म में जन्म नहीं लेगा, बादर में ही जन्म लेगा, ऐसा नियम है। जीव दो प्रकार के, बादर एकेंद्री जीव और सूक्ष्म एकेंद्री जीव। द्वितीय गुणस्थान में अगर मरण होता है तो बादरों में ही जन्म होता है, सूक्ष्म जीवों में जन्म नहीं होता। उसमें भी पर्याप्तकों में ही जन्म होता है, अपर्याप्तकों में जन्म नहीं होता। द्वितीय गुणस्थान में मरण करके पृथ्वी कायिक बन रहा है, जल कायिक भी बन रहा है और वनस्पति कायिक भी बन रहा है, और उसमें भी बादर में जन्म ले रहा है, उसमें भी पर्याप्तकों में ही जन्म ले रहा है, अपर्याप्तक नहीं बनेगा, ये नियम हो गया। अपर्याप्त कहने जो श्वास के 18वें भाग पर मन मरता है ना, वो वाला जीव, पृथ्वी कायिक भी है, जल कायिक भी है, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक भी है, किंतु उसमें जन्म नहीं लेगा। इस प्रकार एकेंद्रियों में कहाँ जाता है इसको कहा। अब पंचेंद्रियों में कहाँ जाता है इसको भी कहते हैं। संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्क व असंख्यात वर्षायुष्क दोनों पर्यायों में जन्म ले सकता है। संख्यात वर्षायुष्क तिर्यंच कौन? कर्मभूमि। जलचर, थलचर, नवचर तीन प्रकार के हैं और संगी पंचेंद्री हैं, उसमें जन्म ले सकता है। कर्मभूमि, भोगभूमि में भी जन्म ले सकता है असंख्यात वर्षायुष्क में। और जन्म लेने वाला कौन है यहाँ? सौग्नि पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक है और समूर्छन पर्याप्तक जीव है। संगी पंचेंद्री समूर्छन पर्याप्तक जीव है, तो समूर्छन जीव भी भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है। ये हो गया, समूर्छन जीव भी भोग भूमि में जाकर उत्पन्न हो सकता है। यहां समूर्छन है एक, क्योंकि कर्म भूमि है। भोग भूमि में तो समूर्छन जीव होते नहीं, पर समूर्छन जीव भोग भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं, ये पूछेंगे। हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? तो दूसरे गुणस्थानवर्ती भी हो सकते हैं, प्रथम गुणस्थानवर्ती भी हो सकते हैं और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी हो सकते हैं। उसमें गर्भज जीव भी वहां भोग भूमि में जा सकते हैं और समूर्छन जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं भोग भूमि में। किंतु विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि समूर्छनों में सभी समूर्छन, सब प्रकार के समूर्छन जीव नहीं जा सकते। जैसे असंगी पंचेंद्री समूर्छन जीव नहीं जाएगा, एकेंद्री, द्विनेंद्री, त्रिनेंद्री, चौत्रेंद्री, पंचेंद्री, असंगी ये नहीं जाएंगे, तो संगी पंचेंद्री जीव ही जाएंगे। और वह भी कौन? पर्याप्तक समूर्छन ही जाएंगे, अपर्याप्तक समूर्छन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे बोलो? असंगी पंचेंद्री क्यों नहीं जाता? मन नहीं है। और समूर्छन जा तो रहा है, मन सहित वाला जा रहा है, मन रहित वाला नहीं जा रहा है। तो मन सहित वाला समूर्छन जीव जा रहा है तो कौन जाएगा? पर्याप्तक। जैसे उदाहरण, कौन जाएगा? समूर्छन हो, पर्याप्तक हो और भोग भूमि में जाता हो। नहीं, दूसरे गुणस्थानवर्ती क्यों? पहले गुणस्थान में भी मरण करके भोग भूमि जा सकता है। दूसरे गुणस्थान में जरूर मरण हो रहा है, परंतु वो उनका नाम ले लो कि कौन जा रहा है। हाँ, जीव का नाम लेना है। दानानुमोदना तो संगी पंचेंद्री ही कर सकता, ये बात अलग है, परंतु जा कौन रहा है? समूर्छनों में कौन समूर्छन पर्याप्तक संगी पंचेंद्री जा रहा है? हाँ, वही एक उदाहरण आता है कि रागो मत्स्य, तंदुल मत्स्य, ये समूर्छन है। जलचर समूर्छन है और ये संगी पंचेंद्री होने के कारण से दान और दानानुमोदना का होना संभव है। ये दान भी कर सकते हैं और दानानुमोदना भी कर सकते हैं। काय में, सुपात्र में। तो उधर कहाँ से सुपात्र आ गए आप पूछेंगे? स्वयंभू रमण समुद्र में सुपात्र कौन मिलेगा? पांचवें गुणस्थान की व्यवस्था वहां है। तो एक तिर्यंच जीव, मध्यम सुपात्र तिर्यंच जीव को कोई दान और दानानुमोदना करता है तो वह भोगभूमि में जन्म ले सकता है, नहीं करता है तो नहीं लेगा। मनुष्य गति में क्या बन सकते हैं द्वितीय गुणस्थान में मरण करके? यही तिर्यंच जीव, गर्भज और समूर्छन संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव मनुष्य गति में क्या बन सकेंगे? गर्भज पर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्य का मनुष्यों में भी उत्पन्न हो सकते हैं और असंख्यात वर्षायुष्य मनुष्यों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। यानी भोग भूमि के मनुष्य भी बन सकते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य भी बन सकते हैं। कोई स्वयंभू रमण समुद्र में सम्मूर्छन मत्स्य है, द्वितीय गुण स्थान में मरण किया, प्रथम में तो जा सकता है, द्वितीय गुण स्थान में मरण किया, ठीक है, वहां से यहां कोल्हापुर में आकर के मनुष्य बनकर जन्म ले सकता है आपके परिवार में। आप आश्चर्य करेंगे, इतनी दूर कहां से कैसे आ गया? तो आने के लिए टाइम लगता है क्या? स्वयंभू रमण समुद्र कहां है? एक राज्य दूर है यहां से, वहां से यहां आकर के मनुष्यों में पैदा हो सकता है। संख्यात वर्षायुष गर्भज मनुष्यों में ही उत्पन्न होगा। देखो विशेषता, सम्मूर्छन वो है, लेकिन यहां मनुष्यों में सम्मूर्छन मनुष्य होकर के जन्म नहीं लेगा। यानी अपने मलमूत्र में जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं ना, उसमें उत्पन्न नहीं हो सकेगा। क्यों प्रश्न पूछो? क्योंकि द्वितीय गुण स्थान है, द्वितीय गुण स्थान में मरा हुआ जीव सम्मूर्छन मनुष्य नहीं बनेगा। क्या कारण है? अभी अभी तो सम्यक दर्शन से च्युत हुआ है, अभी वहां पर परिणामों की विशुद्धि है। सम्यक दर्शन के काल में परिणाम शुभ थे और किसी अनंतानुबंधी उदय के काल में सम्यक दर्शन से च्युत होना पड़ा, द्वितीय गुणस्थान हुआ और मरण करके यहां आया, द्वितीय गुणस्थान सहित आया। मरण द्वितीय गुणस्थान में हुआ तो द्वितीय गुणस्थान से सहित ही आएगा, तो यहां आया, जन्म लिया, गर्भजों में जन्म लिया, सम्मूर्छनों में जन्म नहीं लिया। भोग भूमि में भी जा सकता है, वहां से वह रागोमत से सम्मूर्छन मरा और भोग भूमि में मनुष्य होकर या तिरंच होकर जन्म ले सकता है। बड़ा विचित्र है संसार, कौन कहां ट्रांसफर हो रहा है इसको पकड़ नहीं सकते। वो स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप से ट्रांसफर होकर के कोल्हापुर आया और कोई कोल्हापुर से ट्रांसफर होकर स्वयंभू रमण समुद्र में सम्मूर्छन मत्स्य होकर के जन्म लिया, हो सकता है कि नहीं? अदली बदली है ना, मेंढक है, सर्प में भी हो सकता है, समुद्र में जल कायिक जीवों में कई जीव समूर्छन है, जलचर थरचर नपचर, कोई उदाहरण नहीं मिलता नपचर में कौन है। मेंढक है, मछली है, ये संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन पर्याप्तक हो सकते हैं। सांप भी हो सकते सम्मूर्छन, लेकिन कई प्रकार की जातियां हैं, सर्प एक ही प्रकार का नहीं होता, सर्प में अंडज भी है, हाँ गर्भजन्म भी है सर्प में, हाँ पानी में रहता है, कई जातियां हैं, पानी में रहने वाले सांप, भूमि पर रहने वाले सांप और आकाश से उड़ करके जाने वाले सांप, ये सब है। सांप जंप लेते हैं वो बहुत दूर तक, विमान जैसे। नहीं, तिरंच आयु का बंद हो सकता है, एक केंद्र जाति का बंद नहीं कर रहे हैं, नहीं है तो, लेकिन तिरंच आयु का बंद होने के उपरांत आयु का गठन बढ़न हो जाए, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाए, तो कहीं किसी भी पर्याय में जा सकता है वो। द्वितीय गुण स्थान तक तिरंच आयु का बंध है क्या? नहीं, तिरंच गति का बंध है, जा सकता है, एकेंद्रीय पर्याय में भी जा सकता है। आयु कम हो कोई दिक्कत नहीं, हाँ त्रस से स्थावर में आ सकता है, आने में कोई दिक्कत नहीं। ये आने वाला संगी पंचेंद्रीय त्रस है, स्थावर में आ सकता है और स्थावर से त्रस में भी जा सकता है। हाँ, आयु कर्म को उत्कर्षण अपकर्षण करके वह कहीं भी जा सकता है। जैसे मान लो कोई जीव भोग भूमि में जाने की योग्यता वाला था, कर्म भूमि में जा सकता है, अपकर्षण करेगा, आयु कम हो गई तो कर्म भूमि का तिरंच बनेगा, और उत्कर्षण करेगा और कर्म भूमि की योग्य जो पूर्व कोटि आयु है उससे ज्यादा आयु वाला हो जाएगा तो भोग भूमि में चला जाएगा, उसके विशुद्धि के ऊपर डिपेंड है। जैसे किसी मनुष्य ने मनुष्य आयु को बंद किया, मनुष्य गति को बंद किया, और उसने पूर्व कोटि से ज्यादा आयु को बंद किया, अब ये कहाँ जा सकता है? भोग भूमि में। मान लो परिणाम की विशुद्धि कम हो गई और आयु का अपकर्षण हो गया तो पूर्व कोटि के अंदर आया तो कर्म भूमि में जन्म लेगा। उसका हाँ ये संक्रमण हो सकते, हाँ संक्रमित तो होने के उपरांत, देखो गति नाम कर्म है क्या? नहीं, गति संक्रमण हो सकता है कि नहीं? जब देव गति का मनुष्य गति में संक्रमण हो रहा है, त्रस का क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, किसी ने मनुष्य आयु को बंद किया, मनुष्य आयु को बंद करने के उपरांत भी चारों गति नाम कर्म का बंद हो सकता है, किंतु लास्ट में क्या होगा? मनुष्य गति नाम कर्म में शेष गति नाम कर्मों का संक्रमण हो जाएगा और वो मनुष्य गति में ही जाएगा। तो गति बदल सकती है तो पर्याय क्यों नहीं बदलेगी? ये भी तो पर्याय है, फिर देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिरंच आयु का द्वितीय गुण स्थान में रखकर, नहीं नहीं तिरंच आयु का बंध चौथे में होगा, नहीं वो नहीं, जिसने पहले या दूसरे गुण स्थान में रहकर तिरंच आयु का बंध किया है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, पुनः च्युत हुआ है और मरण द्वितीय गुण स्थान में हुआ है, उस जीव की बात है। ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, जब तक आयु का बंध नहीं करेगा, उससे पहले गिरा तो हाँ हाँ आ गया, बंद किया तब होगा। हाँ वही तो, ये सब चिंतन के विषय है, यहाँ पर सामान्य कलम जो हैं लिखे गए हैं, सामान्य कलम है ये, इसके आधार से विचार करना चाहिए। हम क्लास क्यों लगा रहे हैं इसका? कि इससे चिंतन बढ़ेगा, आप जब स्वयं में लगाएंगे उसको तो फिर आपको विचार आएगा कि ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है क्या, आप स्वयं चिंतन करेंगे। नरक किसी भी आयु का एक बार बंद होता है तो आयु चेंज नहीं होता, इसलिए गति नहीं बदलेगी। गति बदल सकती है, आयु बदलेगा नहीं, गति को बदल सकते हैं आयु बंद होने के बाद भी और आयु बंद होने से पहले भी, इसका संक्रमण विक्रमण हो सकता है, किंतु आयु बंद होने के बाद आयु को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आयु बंद होने के बाद गति को तो चेंज कर सकते, लेकिन किसमें? जो आयु है उसी गति के अनुसार, जैसे देवायु है तो देव गति है, देवायु को बंद किया है तो देव गति भी सत्ता में है, तो उस देव गति में तो वो सभी ढलेंगे, लेकिन देव गति किसी में नहीं ढल सकती अन्य गति नाम कर्म में। आयु के अनुरूप गति, आयु आगे गति पीछे पीछे, आयु घट सकती है बढ़ सकती है, ये सब हो सकता है आयु बंद होने के बाद। गति तो बदल सकती है, आयु नहीं बदलेगी, और आयु जो होती है उस संबंधित गति भी तो एक होती है। देव हाँ, गति तो नाम कर्म है, आयु स्वतंत्र कर्म है, आयु कर्म है वो, ये दोनों अलग अलग कर्म है क्या? नहीं, आयु कर्म तो जीने के लिए काम में आता है, गति गति तो एक वो स्थान है जिस स्थान में जन्म दिलाता है, देवगति देवगति के स्थान में जन्म लेगा दिला देगा वो, आयु कर्म वहां जीने के लिए सहयोग बनेगा, ये दोनों कर्म अलग अलग है। जमलिंग क्यों होता है? आयु कर्म चार प्रकार की, गति कर्म भी चार प्रकार के, नरक गति ये नाम कर्म है, ये नरक गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म, तिरंज गति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म, चार प्रकार की गति नाम कर्म, इनका संक्रमण संभव है, आयु कर्म में संक्रमण नहीं है। देवायु नरकायु तिरंज आयु मनुष्यायु ये परस्पर में संक्रमित नहीं होते, नहीं तो हम बदल सकते थे। यदि संक्रमण आयु कर्म में होता ना तो फिर नरक गति बंद हो गया है ऐसा समझ में किसी को आ गया तो उसको नरक जाने की इच्छा नहीं है, और संक्रमण करने की यदि संभावना है तो सब छोड़ छाड़ करके धर्म ध्यान में लीन हो गए तो नरकायु को कन्वर्ट कर दिया, देवायु में देवगति में चले गए, ऐसा नहीं होता है। आयु कर्म माफ नहीं करता। देखो किसी ने बहुत 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 पाप किया, सप्त व्यसन किया, इंद्री सुख भोगा, तो आयु कर्म तो माफ नहीं करेगा। हाँ, उससे पहला आप कुछ भी सुधार कर लो, आयु कर्म बंद होने से पहले सुधार कर सकते, किंतु क्या नहीं कर सकते? हाँ, बंद होने के बाद संक्रमण नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। देवगति, देवगति में भी जन्म ले सकता है संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक तिरंच जीव और सम्मूर्छन पर्याप्तक तिरंच जीव, जो द्वितीय गुण स्थान में मरण कर रहा है ऐसा जीव देवगति में भी जन्म ले सकता है। क्या बनेगा? भवनत्रिक से 12वें स्वर्ग तक जाएगा। देखो कहां तक बताया, अगर मान लो वज्रषभ नारायण सनंदारी है तिरंच, वो राघव मत्स्य है, सम्मूर्छन है, होता है वज्रषभ नारायण, तो फिर भवनत्रिक से 12वें तक क्यों, 16वें तक क्यों नहीं है? इसमें एक कोई कलम छिपा हुआ है, तो उस कलम को जानो, वकील हैं आप लोग, क्या कलम छिपा है इसमें? हाँ, सम्यक दृष्टि हो तो 16वें तक जा सकता था, अब इनको वज्रषभ नारद सनन होते हुए भी 12वें स्वर्ग तक जा रहा है, इसका कारण सम्यक्तों का अभाव। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच अधिक से अधिक 12वें तक ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मनुष्य का भी ऐसा ही नियम है, मनुष्य भी यदि, कौन मनुष्य? असंयमी मनुष्य, जिसने संयम धारण नहीं किया है, असंयमी मनुष्य मिथ्यात्व के साथ में है, उसका भी यदि द्वितीय गुण स्थान में मरण हो जाए तो वह 12वें गुण स्वर्ग तक ही जा सकता है। कौन? गृहस्थ मुनि 9वें ग्रहवेग तक जा सकते हैं। तो वृत्ति की स्पेशलिटी है। हाँ, वृत्ति की स्पेशलिटी, मुनि हो तो 9 ग्रहिक तक जाएंगे, द्रव्य लेंगे, और द्रव्य वृत्ति अनुवृत्ति हो तो, द्रव्य वृत्ति गृहस्थ हो तो वो कहां तक जाएंगे। द्रव्य वृत्ति का मतलब सम्यक तो च्युत, एक सम्यक तो सहित भी रहता है वो तो 16वें तक जाएगा, किंतु सम्यक्तहीन द्रव्य वृत्ति गृहस्थ कहां तक जाएगा, 12वें तक ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो सम्यक्तु का कलम यहां पर ये बता रहा है कि तुमको 16 स्वर्ग तक जाना है तो सम्यक तो चाहिए, या तो सम्यक तो सहित अनुवृत चाहिए। महाव्रत धारण करते हैं तो ग्रविक तक भेज देंगे आपको। मनुष्य में ये 2 प्रकार के विषय समझ लेना चाहिए। मुनि भी मनुष्य, वो वज्र ऋषभ नारायण सनन वाले हों और सम्यक तो हीन हों और द्रव्य वृत्ति हों तो 9 ग्रविक तक, और द्रव्य वृत्ति अनुवृत्ति हो, गृहस्थ हो और सम्यक तो हीन हो तो 12वें स्वर्ग तक। कहां से लेकर? भवनत्रिक से लेकर, भवनत्रिक से लेकर 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। ये चर्चा हो गई। अब संगी पंचेंद्री हो गया ना, एक पूरा हो गया। अब कि कौन से गुण स्थान में? 3रे गुण स्थान में। संगी पंचेंद्री पर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्कृत रेंच जीव उपरोक्त, यानी 2 प्रकार का समूर्छन और गर्भज। 3रे गुणस्थान में जन्म मरण न होने से इसका कथन नहीं बन सकता, 4ों गतियों में क्रास लगा दिया, मरण भी नहीं जन्म भी नहीं। अब कौन सा गुणस्थान रह गया? 4था और 5वां। त्रिरेंच गति में अधिक से अधिक कितने गुणस्थान हैं? 5। तो 4था और 5वां गुणस्थान में मरण करके कहां तक जा सकता है? सम्यक दृष्टि नियम से देव गति में ही जाता है, इसलिए 3 गति को क्रॉस लग गया। सम्यक दृष्टि बनने का भी लाभ तो देखो कितना है, नियम से देव गति में ही जाएगा वो, त्रिरेंच होकर के भी। मनुष्य का भी यही नियम है, मनुष्य भी 4थे गुणस्थान में है तो देव गति को छोड़कर अन्य गति में जाता नहीं है। पहले से ही मनुष्य आयु त्रिरेंच आयु या नरकायु का बंद किया हो तो बात अलग है, परंतु जिसने किसी भी प्रकार का आयु का बंद नहीं किया और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक तो के काल में वो नियम से देवायु का ही बंद करता है। दोनों को एक साथ समझाया, 4था गुणस्थान और 5वां गुणस्थान। 4था गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि, त्रिरेंच और 5वां गुणस्थान देश विरत त्रिरेंच जीव। ये अधिक से अधिक दोनों का एक सा कथन है। देखो, 4था गुणस्थान होकर के भी 16वें स्वर्ग तक भवनत्रिक से नहीं लेना यहां, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में नहीं जाते, त्रिरेंच हो तो भी नहीं जाते और मनुष्य हो तो भी नहीं जाते। तो पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, त्रिरेंच को भी 16वां स्वर्ग है 4था गुणस्थान प्राप्त किया तो। देखो कितना महत्वपूर्ण है, 16वें स्वर्ग तक जा सकते सम्यक दृष्टि, व्रत नहीं कुछ नहीं, तो सम्यक्त्व की महिमा तो देखो कितनी, 16वें स्वर्ग तक जन्म दिला रहा है। सिर्फ इतना ही है कि सहनन अच्छा हो, कम से कम 4था सहनन हो, 3रा हो चलेगा, 2रा 1ला, इन सहननों से 16वें स्वर्ग तक जा सकते त्रिरेंच। त्रिरेंच गति का कथन, जो कर्मभूमि संबंधित कथन था वो पूरा हो गया। अब भोगभूमि की जो त्रिरेंच है उसका कथन है। भोगभूमि व कुभोग भूमि के संगी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि त्रिरेंच व संगी पंचेंद्री सासाधन सम्यक दृष्टि त्रिरेंच, इसका कथन। भोगभूमि में असंगी पंचेंद्री त्रिरेंच जीव नहीं पाए जाते, विकलत्रय भी नहीं होते, इसलिए केवल पंचेंद्री का यहाँ कथन करेंगे। गुणस्थान यदि पहले में या दूसरे में मरण हुआ तो भोगभूमि के जीवों के जो त्रिरेंच हैं, भोगभूमि जीव त्रिरेंच जो हैं उनका मरण पहले में या दूसरा में हुआ तो कहाँ जाएंगे? नियम से भवनत्रिक में। ये मिथ्या दृष्टि हो तो भी अन्य गति में नहीं जाएंगे, देव गति में ही जाएंगे। वृत्ति नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है, फिर भी देव गति में जा रहे हैं। क्या कारण है? भोगभूमि के त्रिरेंच पहले गुणस्थान में मरण कर रहे हैं तो नरक त्रिरेंच और मनुष्य गति में क्यों नहीं जा रहे हैं? कारण वो नहीं, भोगभूमि का त्रिरेंच पाप करता ही नहीं, बैठे बैठे रहता है, पाप होता नहीं, कल्प वृक्षों से फल भोगता है, आराम से रहता है और संक्लेश परिणाम होते नहीं, कषाय तीव्र रहती नहीं। कर्म भूमि में कषाय तीव्र होती है और बहुत पाप कमाता है। एक कोने में बैठे बैठे ही मन से पाप करता है, तन से वचन से पाप बहुत कम होता है, मन से ज्यादा होता है। और ये किसको होता है? कर्म भूमि की त्रिरेंच को ही ज्यादा होता है या मनुष्य को ज्यादा होता है। भोगभूमि को, भोगभूमि के जीवों को नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि खाने पीने के लिए मिल रहा है, थोड़ी सी इच्छा उत्पन्न हो, खाने के भाव आ गए, भूख लगी, जा करके मांग लेता है, तृप्त, फिर छुट्टी, कोई काम नहीं, अब खेलो, इधर उधर जाओ, मनोरंजन करो, मंद कषाय। कर्म भूमि का छोटा बच्चा नरकायु का बंद करेगा क्या? की इच्छा बहुत छोटी होती है, बस भूख लगी, खाने की इच्छा होती है, खा लिया, खेलने की इच्छा होती है, किसी दूसरे के संबंध में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करेगा क्या? तो छोटे बच्चे भोग भूमि के जीवों के समान है, पाप ज्यादा नहीं होता, शांत रहते हैं। हाँ, ये स्पेशल कथन, ये स्पेशल प्रश्न है, तो इस स्पेशल प्रश्न के लिए कथन भी स्पेशल चाहिए। नरक तो नहीं जा सकेगा, त्रिरेंच गति भी नहीं जा सकेगा। हाँ, मनुष्य गति में देव गति में जा सकता है। 8 साल से पहले सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है तो इतना विवेक नहीं रहता, इतनी सोचने की क्षमता नहीं है, पाप कम होता है। वो भूमि के त्रिरेंचों में शैली, छल कपट, छल है के शैली, छल कपट अलग है, शैली अलग है, छल कपट नहीं करेंगे वो, कषाय मंद है, छल कपट की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन कषाय का उदय तो रहेगा, परंतु कषाय का फल मिले ये कोई नियम नहीं है। नौ कर्म का निमित्त पाकर कषाय फल देता है, तो भोगभूमि में उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य मिथ्या दृष्टि है तो उनके अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ चारों कषायों का उदय है। चारों कषाय उदय में रहते ही हैं, बदल होता रहता है, अंतर्मूर्त काल ही है किसी भी एक द्रव्य कर्म के उदय का, कषाय का, तो अंतर्मूर्त में चेंज होता रहता है। लेकिन उदय में आया हुआ कर्म उस जीव को फल दे, ये कोई नियम नहीं। लोभ कर्म फल दे सकता है, माया कर्म फल दिए बिना जाए ये भी संभव है, क्योंकि मायाचारी के लिए कोई निमित्त ही नहीं है। लोभ के लिए तो निमित्त है, भूख लगी, इच्छा उत्पन्न हो गई, ये लोभ कर, लोभ का उदय है, तो कल्प वृक्ष के सामने जा करके इच्छा करेंगे, ये लोभ कर्म के उदय में करेंगे। पर माया किस कषाय के उदय से करेंगे? कोई निमित्त तो चाहिए ना बाहर। हाँ, क्रोध किस निमित्त से करेंगे? निमित्त तो चाहिए, निमित्त नहीं है तो क्रोध फल नहीं देगा, आएगा उदय में चला जाएगा, अंतर्मूर्त रहेगा चला जाएगा, लोभ आएगा फल देगा चला जाएगा, क्रोध आएगा फल नहीं देगा चला जाएगा, मान आएगा फल नहीं देगा चला जाएगा, ऐसा हो सकता है? हो सकते हैं, जब निमित्त पड़े तो फल देगा, निमित्त न पड़े तो फल भी नहीं देगा। हम लोगों को भी कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप इतने एक घंटे तक प्रवचन सुना और यहाँ पर परिणाम शुभ हैं, तो क्या क्रोध मान माया लोग ये जो चार कषाय अप्रत्याख्याना वर्णी के हैं, क्या इसमें से कोई एक ही उदय रहा? घंटे तक बदल होता रहा, लेकिन फल दिया या फल दिए बिना गया? फल दिए बिना गया, क्रोध आया फल दिए बिना गया, क्यों? अन्य काम में हम लगे हुए, मान आया फल देने दिए बिना गया, लोभ आया फल दिए बिना गया, ऐसा होता है? पर गुणस्थान चौथा ही रहेगा। पर बंदर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आत्मा निरंतर रागादि भावों को कर ही रहा है। मैं प्रवचन सुनूं, ये किस कर्म का उदय? लोभ, आप प्रत्याख्याना वर्णी लोभ कषाय का उदय। और प्रवचन सुनते समय सुनो, ये जो ये अनुराग है, इस अनुराग संबंधी बंध तो हो रहा है कर्म का, पर अशुभ का बंध नहीं हो रहा है, शुभ कर्म का बंध हो रहा है। द्रव्य कर्म का उदय तो वो मोहिनी कर्म अशुभ है, घाती कर्म है, पाप कर्म है, पाप कर्म के उदय में क्या हम पुण्य कर्म को नहीं बांध सकते? बांध सकते हैं, तो हम पुण्य का लोभ के उदय में लोभ कर रहे हैं, तो किसके प्रति लोभ कर रहे हैं? अच्छाई के लिए, तो अच्छाई के लिए ये लोभ ये शुभ परिणाम का कारण और पुण्य बंध का कारण बना। पाप का उदय है, पुण्य कर्म बंध रहा है। भवनत्रिक में जाएंगे। पहले गुणस्थान में या दूसरे गुणस्थान में मरण करने वाला भोग भूमि का त्रियंच नियम से देव गति में ही जाता है, अन्य गतियों में जा नहीं सकता और भवनत्रिक में जा सकता है, स्वर्गों में उत्पन्न नहीं हो सकता। कौन? सम्यक तो रहित भोग भूमि का त्रियंच या भोग भूमि का मनुष्य को भी साथ में समझ सकते हैं, कोई फर्क नहीं कथन में। पर सम्यक दृष्टि रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? पहले और दूसरे दो ही स्वर्ग में जाएगा। और सनन कौन सा है उसका? वज्रऋषभ नारा सनन है, फिर भी पहले दूसरे में जा रहा है, पहले दूसरे स्वर्ग में जा रहा है। ये वैसा ही नियम है जैसा, देखो, यहां से मरण कर कोई मनुष्य या त्रिरेंच देवगति में जाकर स्त्री पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, तो स्त्री पर्याय के उत्पत्ति उत्पत्ति की अपेक्षा से तो दो ही स्वर्गों में उत्पन्न होता है। उपपाद जो बने हैं स्त्री पर्याय के, उपपाद स्थान पहले और दूसरे स्वर्ग तक ही हैं, आगे के स्वर्गों में स्त्री पर्याय के उत्पाद स्थान नहीं हैं, इसलिए दो स्वर्ग तक जन्म लेता है और गमन ऊपर के स्वर्गों में कर सकता है। हाँ, और ऐसा ही ये भोगभूमि का जीव दूसरे स्वर्ग तक जा रहा है तो क्या पुरुष पर्याय में ही उत्पन्न होता है देवगति में? ऐसा कोई नियम नहीं, स्त्री पर्याय में भी उत्पन्न हो सकता है। हाँ, तो उत्पाद कहाँ हुआ? दूसरे स्वर्ग तक। फिर वो आगे जा सकता है क्या? उत्पाद के बाद, उत्पन्न होने के बाद जा सकता है। हाँ, वो ठीक है आयु के अनुसार, परंतु जन्म तो दूसरे स्वर्ग तक रहेगा, वह जन्म के बाद ऊपर भी जा सकता है। यहां जन्म का कथन है, कौन से स्वर्ग तक जन्म ले सकता है ये कथन है, ऊपर जा सकता है क्या नहीं, जन्म के बाद जा सकता है क्या नहीं, ये कथन नहीं। यहां पर उत्पत्ति का कथन है, दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न होने के बाद फिर ऊपर के स्वर्गों में भी जा सकता है। किंतु देव हो तो हाँ, रहना भी वही, जन्म भी वही, स्त्री पर्याय इससे आगे जा सकते हैं, तो एक अपेक्षा से अच्छा है ना। ऊपर के स्वर्गों का कम से कम दर्शन तो होता है, देखने का भाग्य, और नीचे देखने का भाग्य नहीं उनको। अच्छा, दूसरी बात है, दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होता है और पुरुष पर्याय में उत्पन्न होता है, तो उसकी आयु तो दूसरे स्वर्ग के लायक ही बंधता है, परंतु स्त्री पर्याय में उत्पन्न होने वाले जीव को अधिक भी हो सकता है और वो ऊपर जा सकता है। नहीं नहीं, उधर भी रह सकता है, मरण कहीं भी हो सकता है, मरण काल तक वो जीव कहीं भी रह सकता है। हाँ, आयु का प्रमाण ज्यादा होगा, लेकिन वहां पुरुष पर्याय की आयु अलग है, स्त्री पर्याय की आयु अलग है, आयु एक सी नहीं है दोनों की। स्त्री पर्याय की आयु की अपेक्षा से वह कहां तक जा सकती है ये अलग कथन है, और पुरुष पर्याय में इतनी इतनी आयु बंध गई तो ये कहां तक रह सकता है? अपने स्वर्ग में ही रह सकता है, आगे नहीं जा सकता, ऐसा कथन है। किसको, कहां से? मर्जी से जाता नहीं, मर्जी रख सकता है, उसमें स्वतंत्रता है, पर जाने के लिए मर्जी स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, मर्जी से जो करूं, कुछ हम परिणामों के भाव कारण से कर्म को बांधते हैं, वो कर्म हमको ले जाएगा, मर्जी से काम नहीं चलता। मरण के पश्चात हम देवगति में जा रहे हैं, तो हमारी मर्जी नहीं है तो भी जाना पड़ेगा। हाँ, कर्म ले जाएगा, कर्म खींच के ले जाएगा। हाँ, पुद्गल का मतलब ऐसा मत समझो कि ये जो पुद्गल है ऐसा है, कर्म पुद्गल अलग है और बाह्य पुद्गल अलग है। कर्म आपको हिला सकता है, उसमें उतनी ताकत है, क्योंकि आत्मा के साथ आत्मा और कर्म एकमेक हो गए हैं, इसलिए कर्म को सर्वथा अचेतन नहीं कहा, कर्म को चेतन भी कहा। जब तक उस जीव प्रदेशों के साथ कर्मों का संबंध है, तब तक कर्म कथनचित चेतन है, कथनचित अचेतन है, उसके स्वरूप की अपेक्षा से वह अचेतन है, वो पुद्गल परमाणु होने से। परंतु जीव प्रदेशों के साथ घुल मिला हुआ है, इसलिए उसमें ऐसी शक्ति आ गई है जो जीव को भी अपने फल को देकर उसको हिला सकता है, खींच के ले जा सकता है, क्योंकि आत्म प्रदेश एकमेक है, विभाव रूप में एक है। जीव विभाव दशा में जब रहता है तब कर्म भी विभाव दशा में रहकर फल देते हैं। फलदायक कर्म चेतन है और फलदायक जो कर्म नहीं है वो अचेतन है, जो कि निर्जरा करके हमने छोड़ दिया, वो हमको कुछ नहीं कर सकते, हमको कहीं भी ले जा नहीं सकते। हाँ, चेतना अशुद्ध है। जीव विभाव रूप परिणमन करने के बाद चेतना को अशुद्ध ही कहते हैं। ठीक है, भोग भूमि का जीव तृतीय गुण स्थान की अपेक्षा से देखें, वहां पर जन्म मरण नहीं हो सकता, इसलिए कथन संभव नहीं। अब भोग भूमि में गुणस्थान कितने अधिक से अधिक? चार। तो अंतिम एक गुणस्थान का कथन किया जाएगा। भोग भूमि व कुभोग भूमि दोनों ले लें। हाँ, भोग भूमि व कुभोग भूमि के पंचेंद्री पर्याप्तक सम्यक दृष्टि तिर्यंच जीव असंख्यात वर्षायुष्क भोग भूमि में पंचम गुणस्थान नहीं होता। असंख्यात वर्षायुष्क वाले हैं, भोग भूमि में पंचम गुणस्थान नहीं होता, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान तक कथन समाप्त हो जाता है। भोग भूमि व कुभोग भूमि, मरण गुणस्थान कौन सा है? चौथा। जीव कौन सा है? ये तिर्यंच है, मनुष्य नहीं, तिर्यंच है। तो यह तिर्यंच चौथा गुणस्थान में मरण करने वाला कहाँ जाएगा? देवगति में, पहले दूसरे स्वर्ग तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। स्त्री पर्याय में उत्पन्न होगा तो आगामी स्वर्गों में जन्म के बाद जा सकता है, पुरुष पर्याय में उत्पन्न होगा तो उस स्वर्ग को छोड़कर आगे नहीं जा सकता। हाँ? नहीं नहीं, वो वाला पीछे पीछे वाला भवनत्रिक से कौन सा नहीं, भवनत्रिक में जाएगा। हाँ ठीक है, मिथ्यात्व के साथ जन्म नहीं, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगा। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि वह आगे नहीं जा सकेगा, स्त्री पर्याय में उत्पन्न हो नहीं सकता। फिर यदि स्त्री पर्याय का जीव मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाएगा, पुरुष है तो भवनत्रिक में जाएगा, और स्त्री पर्याय वाला जीव सम्यक दृष्टि हो तो ही पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा। सही है ना? ये पहले जो सोच रहे थे वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, यानी भोग भूमि का स्पेशल कथन है ये। कर्म भूमि का ऐसा हो सकता है ऊपर जाने का, भोग भूमि का कैसे होगा? हाँ, भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्रिक में जाता है तो स्वर्गों में जाने का सवाल नहीं उठता, और जो स्वर्गों में जाता है वो सम्यक दृष्टि रहता है तो फिर वह स्त्री पर्याय में जाता नहीं, जा ही नहीं सकता, ये निश्चित हो गया। कर्म भूमि का जा सकता है, ये निश्चित हो गया, क्योंकि बारहवें स्वर्ग तक भी ये उत्पन्न हो सकता है, स्त्री पर्याय से मरण कर बारहवें स्वर्ग तक भी उत्पन्न हो सकता है सम्यक्त्व रहित जीव कर्म भूमि का, स्त्री पर्याय वाला हो या पुरुष पर्याय वाला हो, दोनों बारहवें स्वर्ग तक जा सकता है। किंतु यह मिथ्या दृष्टि जीव, एक क्वेश्चन है कि द्रव्यलिंगी जीव, द्रव्य अणुवृत्ति या महावृत्ति, ये क्या स्वर्ग में स्त्री पर्याय में उत्पन्न हो सकता है? होने में कोई दिक्कत नहीं, चौथा छोड़ो, वो तो स्त्री पर्याय में जाता ही नहीं, सम्यक तो रहित का ही कथन है, प्रश्न है, जा सकता है, द्रव्यवृत्ति जा सकता है, स्त्री पर्याय में जा सकता है, स्त्री पर्याय, किंतु स्त्री पर्याय में जाने वाला दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होगा, बारहवें स्वर्ग में नहीं जाएगा। और जो बारहवें दूसरे स्वर्ग से ऊपर तीसरा आदि में बारहवें तक जन्म ले रहा है वह स्त्री पर्याय में उत्पन्न होता ही नहीं। कौन कितने कौन से गुणस्थान होते, गुणस्थान को ध्यान में रखकर प्रश्न करो, कौन सा गुणस्थान वर्ती, सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में जाता ही नहीं। गुणस्थान को ध्यान में रखो, कथन करते समय किस गुणस्थान का कथन चल रहा है। पहले गुणस्थान का जीव कर्म भूमि का यदि स्त्री है, पहले गुणस्थान में है स्त्री है और द्रव्यवृत्ति है, तो प्रश्न ये था कि वह स्त्री पर्याय में जा सकेगा क्या, नहीं वो जा सकेगा। हाँ, मिथ्या दृष्टि हो तो भावनात्रिक से जा रहा है तो स्त्री पर्याय में क्यों नहीं जा सकता, केवल स्त्री को ही नियम थोड़ी है ये। हाँ, वो भी जा सकता है लेकिन भाव वृत्ति नहीं जा सकता, और द्रव्य वृत्ति पुरुष पर्याय में भी जा सकता है स्त्री पर्याय में भी जा सकता है, दोनों खुले हैं मार्ग, भाव वृत्ति तो जा नहीं सकता। सूक्ष्म विचार होता है ना, कहीं गणित गलत हो गया तो बता देता है ये पंचांग कि यहां गलत कर रहे हैं। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे अब ना हम विषयांध।